ओमान के संपूर्ण राष्ट्रीय आय का 70% पेट्रोलियम से आता है। यहाँ चार तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन 2,93,000 बैरल तेल निकाला जाता है। अकेले पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यमन के अदन तेल शोधक कारखाने से 1,60,000 बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है। आबू धाबी में खनिजों में केवल पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस ही व्यापारिक स्तर पर बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। यहाँ अशोधित पेट्रोलियम का प्रतिदिन का औसत उत्पादन 1.3 मिलियन बैरल है। दुबई में भी केवल पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। यहाँ इसके अशोधित रूप का औसत उत्पादन 2,20,000 बैरल प्रतिदिन है। जापान के लिए हिंद महासागर प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण आपूर्ति का स्रोत है। यहाँ अपने अस्तित्व के लिए इस प्रदेश से प्राप्त होने वाले कच्चे माल एवं ईंधन पर निर्भर रहता है। इस प्रदेश के संसाधनों के कारण ही विश्व राजनीति में इसकी सामरिक दृष्टिकोण से महत्व तथा अत्यधिक नाजुक स्थिति बनी हुई है। इसी संदर्भ में यहाँ संक्षेप में जापान के आर्थिक आवश्यकताओं की चर्चा अनुपयुक्त न होगी। जापान से 1955 के बाद हुए तीव्र औद्योगिक वृद्धि के साथ इसकी पेट्रोलियम की मांग में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। पेट्रो रसायन तथा अन्य पेट्रोलियम पर उद्योगों हेतु कच्चे माल एवं ईंधन के लिए पेट्रोलियम की बड़ी आवश्यकता होती है। 1960 से 1970 के मध्य जापान की आवश्यकता 30 मिलियन टन से 200 मिलियन टन तक जा पहुंची। इस समय जापान विश्व का सबसे बड़ा अशोधित तेल आयातक देश है। इसको अपनी आवश्यकता का संपूर्ण तेल आयात करना पड़ता है। अपनी आवश्यकता का अधिकतर भाग फारस की खाड़ी के देशों से आयात करता है। इसके कुल पेट्रोलियम आयात का 88% मध्य पूर्व से आता है। ईरान के कुल तेल निर्यात का आधा जापान को जाता है। जापान की अर्थव्यवस्था हेतु इतनी जीवनदायक आपूर्ति मलक्का जलडबरू मध्य द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण नाजुक व्यापार नलिका के रूप में इसका महत्व बढ़ जाता है। 1970 में हिंद महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों ने इसकी कुल आवश्यकता का 21% आपूर्ति किया। इस समय फारस की खाड़ी के देशों के अतिरिक्त जापान का ऑस्ट्रेलिया से शक्तिशाली संबंध है। प्रदेश के अन्य देशों का जापान के निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में संभावनाएं अपेक्षाकृत सीमित हैं। पेट्रोलियम के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया जापान को कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 1967 में जापान ने ऑस्ट्रेलियाई निर्यात में प्रमुख ग्राहक ब्रिटेन का स्थान ले लिया। 1968 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का 21% आपूर्ति लिया। 1967 में इसने आश्चर्यजनक रूप से ऑस्ट्रेलिया के कोयला निर्यात का 28%, लौह अयस्क का 85% तथा अन्य खनिजों का 60% लिया। इस प्रकार हिंद महासागरीय प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया जापान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया। 1960 के बाद से ऑस्ट्रेलिया जापान के व्यापारिक संबंधों में तब और वृद्धि हुई जब जापानियों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल लौह अयस्क निक्षेप का सफलतापूर्वक दोहन किया। इस प्रकार 1967 में माउंट न्यूमैन कंपनी ने 15 वर्षों में जापान की 8 इस्पात मिलों को 100 मिलियन टन लौह अयस्क बेचने का ठेका प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनियों से इस प्रकार के कई मोल भाव हुए और 1972 तक जापानी फर्मों ने ऑस्ट्रेलिया से 50 मिलियन टन लौह अयस्क खरीदने का ठेका प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान को कोयला आपूर्ति करने में अपना द्वितीय स्थान सुरक्षित रखा। जापान ऑस्ट्रेलिया के कोक कोयला, तांबा तथा प्राकृतिक गैसों में भी रुचि रखता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तटीय मग्न तट से थोड़ी दूर ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक गैस का बृहत भंडार पाया जाता है। ऊर्जा हेतु अपनी अंतहीन खोज में जापानी इसमें भी पर्याप्त रुचि प्रकट कर रहे हैं। ईरानियों की डामाडोल राजनैतिक परिस्थिति तथा जापानियों की ऊर्जा एवं गैस की खपत से वहां 10 मिलियन टन तरल प्राकृतिक गैस की आवश्यकता महसूस की गई है। 1979 से जापानियों ने ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम परियोजना के विकास में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। जून 1979 में हुए टोकियो शिखर वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के लिए 1979 तथा 1980 में तेल आयात का स्तर स्थापित करना तथा 1985 के लिए दीर्घावधि के लक्ष्य का अनुमान था। इसमें 1980 में जापान के वर्तमान दैनिक तेल आयात का स्तर 5.4 मिलियन बैरल स्थिर रखा गया। जापान एवं कनाडा को अपने 1984 के योजना लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष रियायत मिली, इस आधार पर कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए तथा जापान में सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि हेतु इसकी पूर्णतया आयातित तेल पर निर्भरता देखते हुए इसे प्रतिदिन 6.3 से 6.9 मिलियन बैरल तेल का आयात स्थापित करने का लक्ष्य रखने की अनुमति मिली। कनाडा के घरेलू तेल उत्पादन में अप्रत्याशित कमी देखकर इसे 1985 तक अपना तेल आयात दुगना कर 6 लाख बैरल कर देने की अनुमति प्रदान की गई। 4 देशों पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली को 1979 से 1985 के मध्य अपना तेल आयात 1978 के स्तर पर ही स्थिर रखने की स्वीकृति दी गई। 1978 में पश्चिमी जर्मनी ने 2.7 मिलियन बैरल, ब्रिटेन ने 8 लाख बैरल, फ्रांस ने 2.2 मिलियन बैरल तथा इटली ने 2.2 मिलियन बैरल दैनिक तेल का आयात किया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि 1985 तक पेट्रोलियम उत्पादक देशों ओपेक की उत्पादन क्षमता 35 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच जाएगी। जापान की वर्तमान चिंता तेल आपूर्ति में कमी है, न कि तेल की बढ़ती दरें। इसलिए उसने इंडोनेशिया से अर्ध सरकारी समझौता भी किया है, परंतु अज्ञात भविष्य में जापान को मध्य पूर्व की तेल आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता के अस्त व्यस्त होने पर यह व्यवस्था शायद ही काफी हो।